नहमिया अध्याय पांच। पांचवें अध्याय में और समस्याएं उठती है जो अंदर की समस्याएं हैं। यदि शैतान आपको अपनी बाहर की ताकत से नहीं हरा सकता तो वो भीतरी ताकतों के द्वारा विनाश करता है। कई बार कलीसिया के सबसे बड़े दुश्मन प्रायः बाहर के नास्तिक या ईश्वर विरोधी लोग नहीं होते हैं, परंतु कलीसिया स्वयं होती है। कलीसियाओं में दलबंदी, जलन काम करती है और ये मन की लालच से उत्पन्न होती है। ओह, वो कलीसिया हमसे अधिक आशीषित हो रही है। इस प्रकार कलीसियाओं में आंतरिक कलह उत्पन्न हो जाता है। निस्संदेह आपके मन में ये विचार आता होगा कि एक न एक दिन कलीसियाएं इस सत्य को समझ जाएं कि हम एक देह हैं और हम सब एक ही राजा, एक ही प्रभु के लिए काम करते हैं। एक मनुष्य आज सुबह मुझे बता रहा था कि एक पादरी ने अपने सदस्यों को हमारी आराधना में आने से मना किया है। कोई बात नहीं, हमारे यहां तो वैसे ही जगह की कमी है। मैं आपको किसी भी कलीसिया की आराधना में जाने से नहीं रोकता हूं। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि हमारे सदस्य आसपास के लगभग सभी कलीसियाओं में भरे हुए हैं, क्योंकि वे जहां भी जाते हैं अपने साथ मसीह यीशु के प्रेम को ले जाते हैं, और मसीह का प्रेम सब जगह आत्मिक जागृति ला रहा है। मेरे लिए तो उत्तेजना का कारण तो यह है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। अफसोस की बात है कि कलीसियाएं नहीं समझती कि हमें मसीह के लिए मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। हमारी समस्याएं हैं कि हमने शत्रु को ठीक से नहीं पहचाना है। हम शत्रु की कलीसियाएं नहीं हैं, परंतु परमेश्वर की, जिन्हें परमेश्वर ने अधिकाई से आशीष दी है। ये तो खुशी का, आशीष का, आनंद और महिमा करने का कारण है, ईर्ष्या और जलन का नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके स्थान पर अद्भुत रूप से कार्य कर रहा है। हमारी मानसिकता कुछ इस प्रकार है, लेकिन वो तो बैप्टिस्ट है। परमेश्वर बैप्टिस्ट से, नाजरीनों से भी वैसा ही प्यार करता है जैसा वो हमसे करता है। हमें एक ही देह पर विश्वास रखना चाहिए। यदि एक अंग सम्मान पाता है तो सभी अंग सम्मान पाते हैं। जब एक भाग आशीष पाता है तब सभी आशीष पाते हैं। हम परमेश्वर के राज्य का एक भाग है। मैं उस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं जिस दिन उसने मुझे संकीर्ण सांप्रदायिकता से बचाया और पूरी देह कलीसिया को देखना सिखाया। अब मुझे दूसरी कलीसियाओं से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं कि वे फूल फल रही है और आशीष पा रही है, परंतु मैं खुशी मना सकता हूं क्योंकि परमेश्वर का पूरा राज्य बढ़ रहा है, और अपनी पूरी सच्चाई से कह सकता हूं, परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है। मैं उसके हर कार्य से आनंदित होता हूं कि पूरे देश में लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जेरी फेलवेल और पैट रॉबर्टसन की धर्म सेवा के लिए, और उन सब के लिए कि वे परमेश्वर के लिए बहुत लोगों को छू रहे हैं। रेक्स हैम्बर्ट जैसे लोग बहुत से जीवनों तक पहुंच रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं उनके तरीकों से या उनकी धर्म शिक्षा से सहमत ना भी हूं तो भी मुझे उन छोटे मतभेदों को हमारे आनंद में और इस सत्य के बीच में आने नहीं देना चाहिए कि परमेश्वर उनको प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उनके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में लाए जा रहे हैं। पौलुस स्पष्ट करता है कि रोम में ऐसे बहुत से लोग थे जो दूसरे उद्देश्य से मसीह का सुसमाचार सुनाते थे। वो कहता है, कोई फर्क नहीं, जैसा भी मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है, प्रभु की बड़ाई हो। वो सोचते हैं वो मेरे बंधनों और विपत्ति को बढ़ा रहे हैं। वो समझते हैं कि ये सब मुझे परेशान करता है, पर ऐसा नहीं है। मैं आनंदित हूं कि मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है, और यही हमारी मानसिकता होना चाहिए। लेकिन उन लोगों में से जो दूसरी समस्या आई वो अंदरूनी थी। ये समस्याएं संबलत और तोबिया या परमेश्वर के कार्य में रुकावट डालने वाली बाहरी ताकत आदि के कारण नहीं थी, वो अपने भीतर की समस्या थी। बहुत बार शैतान हमारे अंदर से ही हमला करता है। वो कलीसिया में विभाजन और क्लह के द्वारा ही नहीं, वरन उन विचारों के द्वारा भी हमला करता है जिनका बीज उसने कलीसिया में बो दिया है। ऐसी धारणाएं विश्वासियों का फलवंत होना नाश करती है। ऐसी अनेक धारणाएं हैं जो आत्मिक बांझपन उत्पन्न करती है। वे अपने आप में तो इतनी बुरी नहीं होती है, परंतु वे आपको मसीह यीशु के निमित्त फलवंत होने से रोकती है। आप फलहीन हो जाते हैं। बहुत सी धर्म शिक्षाएं मनुष्य को अपने तक सीमित कर देती है। अपने आप को देखना, अपनी स्थिति को देखना, मैं किसी को मसीह के पास नहीं ला सकता जब तक कि मैं उनकी पूरी तरह रखवाली वो अगुवाई करने के लिए परिपक्व न हो जाऊं। इसलिए मैं कोई गवाही अब न दूंगा जब तक मेरा चरवाह मुझे नहीं बताता कि मैं परिपक्व हो गया हूं, कि किसी और को भी इस परिपक्वता में ले आऊं तथा उसकी देखरेख भी कर सकूं। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि मैं गवाही देना छोड़ देता हूं और मुझ में फल नहीं लगते। इससे जन समूह चरवाहे के बिना रह जाते हैं और वो अपना भोजन स्वयं खोजने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य समाज के लिए ज्योतिहीन बन जाता है। छुटकारा, शैतान, शैतान, शैतान। परंतु शैतान है किसमें? मैं बड़ी जिज्ञासा से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए सभा में देखता हूं। यदि आपने डकार लिया तो आप में पेटूपन की दुष्ट आत्मा है और उसका निकाला जाना आवश्यक है। आप ऐसा समझने लगते हैं कि बस आप ही है और कोई नहीं है, परंतु ये नहीं जानते। ऐसी मानसिकता का परिणाम ना समझी निर्बुद्धि है। ये फलहीनता भी है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्वास्थ्य भेड़ तैयार नहीं होती है। शैतान के हमले कलीसिया के भीतर होते हैं। यरूशलेम में कुछ ऐसे लोग थे जिनमें याजक भी थे और कुछ प्रधान भी थे जो लोगों की तंगहाली से लाभ उठा रहे थे। लोगों को अपनी फसल उगाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए वे पैसा ब्याज पर ले रहे थे। ब्याज इतना अधिक होता था कि उनकी पूरी फसल ब्याज चुकाने में चली जाती थी। वे जीवन निर्वाह के लिए पैसे कहां से लाते? उनके परिवार बहुत बड़े थे, इसलिए उन्हें अपने बच्चों को गुलामी में बेचना पड़ रहा था। उनके प्रधान इस स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें दासत्व में बांध रहे थे। आम जनता के लिए ये बड़ी निराशा का कारण था कि वे इतना अधिक ब्याज दे और उसके ऊपर धनवान लोगों द्वारा गरीबों का शोषण। धनवान लोग गरीबों का शोषण करके अधिकाधिक धनवान बनते जा रहे थे। ये समाचार नहमिया के पास पहुंचा तो उसने इन प्रधानों को बुलाया और कहा, तुम जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। हमें ब्याज के धंधे से मुक्ति पाना है, विशेष करके ब्याज की इस ऊंची दर से। तुम लोग उन दासों को स्वतंत्र कर दो। हमारे लिए अच्छा होगा कि हम आपस में समता बराबरी का जीवन जिए। उन्होंने नहमिया की बात पर ध्यान दिया और उसका कहना माना। नहमिया इतना अधिक अप्रसन्न था कि उसने अपने कपड़े की छोर झाड़कर कहा, इस रीति से जो कोई इस वचन को पूरा ना करे उसको परमेश्वर झाड़कर उसका घर और कमाई उसे छुड़ाए। तब सारी सभा ने कहा आमीन और प्रभु की स्तुति की। हम लोगों के लिए नहमिया एक सुंदर उदाहरण है। उसने कोई वेतन नहीं लिया, उसने कर वसूली में से भी अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। वो जब तक था उसने अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं प्रावधान किया। उसने किसी पर पैसों का बोझ नहीं डाला कि सुविधा का जीवन जिए। उससे पहले जो शासक थे वे लोगों से पैसा वसूल करते थे, परंतु नहमया स्वयं का बोझ उठाता था। उसने ये स्पष्ट कर दिया कि उसका मन उसकी सेवा में लगा हुआ था। उसकी सेवा पेशा नहीं थी, वो एक सच्ची बुलाहट थी। वो अपने अतिथियों को भी भोजन करवाता था। उसकी भोजन तख्त पर प्रतिदिन 150 लोग भोजन करते थे, जिनके लिए एक बैल, 6 भेड़े तथा अन्य वस्तुएं आवश्यक थी। लेकिन वो ये सब अपने खर्चे से करता था। अध्याय के अंत में वो कहता है, अध्याय 5:19, हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है, मैं एक भला मनुष्य हूं, उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। नहमया इतने आगे बढ़ता है जितना मैं तो अपने लिए सोच भी नहीं सकता। मैंने कभी परमेश्वर से नहीं कहा कि जो कुछ मैंने किया है मेरे हित के लिए स्मरण रख। मैं सदा कहता हूं, प्रभु अपना अनुग्रह और दया मुझ पर कर, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयावंत प्रभु है। मैं परमेश्वर के पास अपने कामों या अच्छे जीवन की भरोसा से नहीं आता, परंतु सदा उसके अनुग्रह और दया के भरोसे से आता हूं। कभी कभी ऐसी परीक्षाएं भी आती है जब मैं अपनी अच्छाई को लेकर परमेश्वर के पास आता हूं, विशेषकर जब मैंने कोई दयावंत या परोपकारी कार्य किया हो। परंतु मुझे शीघ्रता करनी होती है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं अनर्थ कर बैठूं और वो व्यर्थ हो जाए। यही तो कारण है कि मुझे परमेश्वर का अनुग्रह और दया के अधीन परमेश्वर के पास आना उचित है, क्योंकि ऐसी स्थिति में परमेश्वर के द्वार सदा खुले रहते हैं और मैं कभी भी उसके पास आ सकता हूं। परमेश्वर उन पर दयावान है और अनुग्रहकारी है जो उसे पुकारते हैं। उसके पास से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। लेकिन नहमया ने बड़ी उदारता से अपना बड़प्पन दिखाया और इस कारण उसने प्रभु से प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है, उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख।